लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि हमने अपने लिए नए देव मूर्तियों का निर्माण किया है। हम प्राचीन सोने के बछड़े की पूजा को अपने बीच एक नए क्रूर रूप में पाते हैं, जो धन की पूजा और एक अर्थव्यवस्था की तानाशाही है, जहां हम सही अर्थ में मानवीय जीवन के उद्देश्य का अभाव पाते हैं। विश्वव्यापी संकट ने वित्त और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उसके असंतुलन को उजागर किया है और उससे भी बढ़कर वहां हम मानव के लिए सच्ची चिंता की कमी को पाते हैं। मानव केवल अपनी जरूरतों में से एक उपभोक्ता में सिमट कर रह गया है। श्रोताओं, समाज में जहां एक ओर अल्पसंख्यक की कमाई तेजी से बढ़ रही है, वैसे ही समाज में कुछ समृद्ध लोगों के बीच उपभोक्ता की चीजों का उपयोग जो अधिकतर जनता को उनके उपयोग से वंचित करता है। यह असंतुलन उन विचारधाराओं का परिणाम है जो बाजार की पूर्ण स्वायत्तता और वित्तीय अटकलों की रक्षा करती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे राज्यों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं, जन सामान्य की भलाई में हो रहे अच्छे कार्यों की निगरानी करती जिससे वे उन्हें नियंत्रण में रख सकें। इस तरह से हम एक नए तानाशाह का जन्म देखते हैं जो अदृश्य और अक्सर आभासी होते, जो एक तरफा और अथक रूप से अपने स्वयं के कानूनों और नियमों को लागू करते हैं। ऋण और ब्याज के संचय भी देश की अर्थव्यवस्थाओं को कठिनाई में डालती और नागरिकों को उनकी वास्तविक क्रय शक्ति का आनंद लेने से वंचित करती है। इन सारी चीजों के अलावे हम व्यापक भ्रष्टाचार और सेवा कर चोरी को जोड़ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। शक्ति हासिल करने की प्यास अपने में असीमित है। यह प्रणाली मुनाफे के रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाना चाहती है। वे चीजें जो अपने में कमजोर हैं, जैसे कि पर्यावरण जो बाजारी हितों के सामने रक्षाहीन है, लाभ के नियम का शिकार होती है। श्रोताओं, इस मनोभाव के पीछे नैतिकता की अस्वीकृति और ईश्वर की अस्वीकृति छिपी है। नैतिकता को एक निश्चित तिरस्कारपूर्ण निगाहों के साथ देखा जाने लगा है। यह मानव के लिए भी प्रतिकूल है, क्योंकि यह पैसे की चाह रखता और शक्ति से संबंधित है। यह हमें एक भय की तरह लगता है, क्योंकि यह व्यक्ति की हेरा फेरी और कमजोरी की निंदा करता है। वास्तव में नैतिकता हमें ईश्वर की ओर लेती है, जिसके फलस्वरूप हम सामान्य बातों से हटकर अपने को एक निष्ठावान कार्य हेतु समर्पित करते हैं। जब ये बातें अपने चरम में होती हैं, तो हम ईश्वर को अनियंत्रित, असहनीय, यहाँ तक कि खतरनाक पाते हैं, क्योंकि वे मानव को बुलाते हैं, जिससे वह अपने में पूर्णता की प्राप्ति हेतु सभी तरह की दास्ताओं से अपने को दूर रखे। नैतिकता के बारे में संत पापा लिखते हैं, वैचारिक नैतिकता अपने में एक अधिक संतुलन और एक मानवीय सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में सक्षम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत पापा कहते हैं कि मैं अर्थशास्त्र में निपुण और राजनैतिक नेताओं को इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा कि वे प्राचीन समय की कही गई एक बात पर चिंतन करें, गरीबों के साथ अपने धन को साझा नहीं करना, गरीबों के धन को चुराना उनकी जीविका छीनना है, या हमारा अपने धन संपत्ति को नहीं बल्कि उनकी धन संपत्ति को धारण करना है। श्रोताओं, एक वित्तीय सुधार के लिए इस तरह के नैतिक विचारों का खुला होना राजनीतिक नेताओं की ओर से दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की मांग करता है। संत पापा कहते हैं कि मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ कि वे इस चुनौती का सामना अपनी आँखों को भविष्य हेतु खुला रखते हुए सुदृढ़ता में करें। वहीं उन्हें चाहिए कि वे हर विशेष बात के प्रति सजग रहें। धन हमारे लिए सेवा का एक कारक बने, न कि हम उसके द्वारा अन्यों पर शासन करें। संत पापा धनी और गरीब सबों को प्रेम करते हैं, लेकिन वे ईश्वर के नाम पर इस बात को याद दिलाने हेतु निष्ठावान हैं कि अमीरों को चाहिए कि वे गरीबों की सहायता करें, उनका सम्मान करें और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करें। मैं आपको उदारतापूर्ण एकजुटता और एक नैतिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र और वित्त की ओर वापसी के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जो मनुष्यों के पक्ष में हो, संत पापा कहते हैं। आज हम बहुत से स्थानों में वृहद सुरक्षा की मांग को सुनते हैं, लेकिन जब तक समाज में और लोगों के बीच बहिष्करण और असमानता की परिस्थिति को बदला नहीं जाता, हिंसा को खत्म करना अपने में संभव नहीं है। गरीब और समाज के सबसे गरीब लोगों को हिंसा के लिए दोषी ठहराया जाता है, फिर भी समान अवसरों के बिना विभिन्न तरह की आक्रामकता और संघर्ष के रूपों को विकसित होने के लिए एक उर्वर भूमि मिलेगी और अंततः इसका विस्फोट होगा। जब एक समाज, चाहे वह स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, अपने अतीत को किनारे छोड़ने की चाह रखता, अपने एक हिस्से को हाशिए पर छोड़ने को तैयार नहीं रहता, तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या कानून प्रवर्तन या निगरानी प्रणाली पर खर्च किए गए संसाधन अनिश्चित काल तक शांति की गारंटी नहीं दे सकते हैं। यह मामला सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवस्था के बाहर किए गए असमानता के शिकार लोग हिंसा को भड़काते हैं, बल्कि इसलिए कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अपने में अन्यायपूर्ण है। जैसे अच्छाई अपने में प्रसारित होती है, बुराई को सहन करना जो अपने में अन्याय है, अपने हानिकारक प्रभाव का विस्तार करता और गुप्त रूप में किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने को तैयार रहता है, चाहे वह कितना भी ठोस क्यों न दिखलाई पड़ता हो। यदि हर कार्य का अपने में परिणाम होता है, तो समाज की संरचनाओं में निहित एक बुराई के विघटन और मृत्यु की निरंतरता संभव होती है। यह एक अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त बुराई है, जो बेहतर भविष्य की आशा का आधार नहीं बन सकता है। हम तथा कथित इतिहास के अंत से बहुत दूर हैं, लेकिन एक सतत और शांतिपूर्ण विकास की परिस्थितियों को अब भी पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त और महसूस नहीं किया गया है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार प्रचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार सुबह को प्रेरितिक प्रसाद में करीब 200 नए धर्माध्यक्षों से मुलाकात की, जिनका अभिषेक पिछला साल हुआ है। एक व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक मुलाकात में संत पापा फ्रांसिस ने नए धर्माध्यक्षों को गरीबों की सेवा करने का प्रोत्साहन दिया। यह मुलाकात धर्माध्यक्षों के एक कोर्स में भाग लेने के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने धर्माध्यक्ष होने, चुनौतियों का सामना करने और विभिन्न मुद्दों को आगे ले चलने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। धर्माध्यक्षों के विभाग एवं पूर्वी कलीसिया के विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने वाले करीब 200 धर्माध्यक्षों ने सोमवार को वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में संत पापा फ्रांसिस से व्यक्तिगत मुलाकात की, जिससे कि वे आपस में खुलकर बातें कर सकें। कोर्स 12 से 19 सितंबर को रोम के रेजिना अपोस्तोलोरुम अथेनियम में संपन्न हुआ। कोर्स का पहला सत्र 1 से 8 सितंबर को संपन्न हुआ था, जिसका उद्घाटन वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने क्रिस्ताग अर्पित करते हुए किया था। कोर्स को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रतिभागियों की संख्या अधिक हो गई थी। संत पापा फ्रांसिस द्वारा धर्माध्यक्षों का स्वागत एक परंपरा है, जिसकी शुरुआत 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की थी। इस साल इस कोर्स का शीर्षक था, महामारी के बाद बदलते युग में सुसमाचार की घोषणा, धर्माध्यक्षों की सेवा। साओ पाउलो के सहायक धर्माध्यक्ष अंजेलो अदेमिर मिजारी ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि मुलाकात व्यक्तिगत थी, जिसको सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया। सहायक धर्माध्यक्ष ने बतलाया कि संत पापा ने उनका स्वागत किया एवं सुझाव दिया कि हम गरीबों के निकट होने की आवश्यकता को ना भूलें, इस बात को समझते हुए कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इस ग्रह में सब कुछ की देखभाल आवश्यक है। उसके बाद संत पापा ने अपने धर्माध्यक्ष भाइयों के अनुभवों, परिस्थितियों एवं आग्रह को सुना। मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान संत पापा के विश्व पत्र अमोरिस लेतीत्सिया, फ्रतेली तुत्ती और लौदातो सी पर गहराई से अध्ययन किए गए। ब्राजील के धर्माध्यक्ष माउरिसियो दा सिल्वा जार्दिम ने कहा, यह अलग अलग दिशा से एक साथ चलने का एक अवसर था। यह हमें लोगों के चरवाहे बनने का प्रोत्साहन दिया और सुझाव दिया कि हमें अपने धर्म प्रांतों में किस तरह एक मिशनरी एकता और सहभागिता की कलीसिया के रूप में संत पापा के सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करना है। संत पापा ने पिछले शनिवार को धर्माध्यक्षों के एक दूसरे दल से मुलाकात की थी। एक खुली वार्ता में संत पापा ने धर्माध्यक्षों से आग्रह किया था कि वे प्रभु के साथ हमेशा संबंध को गहरा बनाए रखें, धर्माध्यक्षों एवं अपने पुरोहितों से मिलकर रहें और विश्वासियों के नजदीक रहें।
हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक आहार के रूप में प्रार्थना की आवश्यकता है, जो हमें ईश्वर से जोड़ती और हमें जीवन की कठिनाइयों के बीच आगे बढ़ने का बल प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना की तुलना सांस लेने से की है। उन्होंने 20 सितंबर के ट्वीट संदेश में लिखा, प्रार्थना को न केवल आराम के समय में किया जाना चाहिए, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर के साथ हमारे संबंध को जीने हेतु सांस लेने के समान करना चाहिए। रविवार को जब संत पापा फ्रांसिस मातेरा में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे, तो बलि परिवर्तन के द्वारा जो होस्तिया यीशु के पौत्र शरीर में बदल जाएगा, उसे कैदियों ने आशा की रोटी नामक पहल के तहत तैयार किया है। यूखरिस्ते कार्यशाला पूरे विश्व में फैल चुका है, जिसका उत्पादन पिछले वर्षों में बॉयनस आयरस में नशीली पदार्थों की आदत से मुक्त हुए युवा, पोम्पे और बेतलेहम में विकलांग लोगों, इथोपिया में पूर्व सड़क के बच्चों, मिलान में एकल माताओं जिन्होंने कठिनाई पार किया है, श्रीलंका में युवा विधवाएं, बार्सिलोना, मपूतो और इटली के कई शहरों में कैदियों एवं जेल से रिहा हुए लोगों ने किया है। पहल का उद्देश्य है एक ख्रिस्त संदेश देते हुए व्यक्ति की मानव प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना तथा ख्रिस्त एवं गरीब व्यक्ति के बीच संबंध को प्रोत्साहित करना। इस पहल में मिलान और मोडेना के कैदी भाग ले रहे हैं, जो 35,000 होस्तिया तैयार करेंगे और इस होस्तिया का प्रयोग 22 से 25 सितंबर को मातेरा में 27वें राष्ट्रीय यूखरिस्ते कांग्रेस में यूखरिस्ते समारोह के दौरान किया जाएगा, जिसके समापन ख्रिस्त्याग का अनुष्ठान संत पापा फ्रांसिस करेंगे। इस पहल को इटली के जेल के चैपलिनों के महानिरीक्षक ने बढ़ावा दिया है तथा जेल सुविधाओं के भीतर काम करने वाले फाउंडेशनों और सहकारी समितियों के समर्थन से कार्य रूप दिया गया है। चैपलिनों के महानिरीक्षक डॉन रफाले ग्रिमाल्डी ने कहा, जेल की चार दीवारी के अंदर तैयार एवं वेदी पर ख्रिस्त के शरीर में बदलने वाले होस्ते का उद्देश्य है आशा की आवाज बनना, सभी कलीसियाई समुदाय एवं नागरिक जगत को संबोधित करना, यह याद दिलाना कि जेल के अंदर भी एक समुदाय है जिसे सुना जाना, स्वागत किया जाना और मुक्ति पाना जरूरी है। डॉन ग्रिमाल्डी ने आशा व्यक्त की है कि यूखरिस्ते कांग्रेस हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि रोटी का छोटा टुकड़ा जो हमारे दुर्बल मानव शरीर को पोषित करता, ख्रिस्त का जीवित शरीर होने के साथ साथ उसमें मानवता की पीड़ा और जेल में रहने वाले कैदियों का चेहरा अंकित है। यूखरिस्ते कांग्रेस के मिस्सा बलिदान में चढ़ाया गया होस्तिया मातेरा में इताली कलीसिया की यूखरिस्ते कांग्रेस में भाग लेने वाले भाई बहनों के साथ कैदियों की आध्यात्मिक सहभागिता है। डॉन ग्रिमाल्डी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो ईश्वर के प्रेम को मनाता एवं जेल के प्रेरित देखभाल को पुनः आगे बढ़ाता है। 35,000 होस्तिया को कैदी अपने हाथों से तैयार करेंगे, उन्हीं हाथों से जिनसे उन्होंने अतीत में अपराध किया था। डॉन ग्रिमाल्डी ने सभी जेल चैपलिन एवं स्वयंसेवकों के प्रति आभार प्रकट किया है जो कैद खानों को सुधार का स्थान बनाते। उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक संकट के इस कठिन समय में दंड संस्थाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है उन महिलाओं और पुरुषों की भावना की, जो घावों को ठीक करना जानते बिना किसी पूर्वाग्रह के, और उन लोगों के प्रति किसी भी तरह की अवमानना के बिना जो अस्तित्वगत जेल के कफन से ढके हुए हैं। कैदियों द्वारा तैयार किया गया होस्तिया कलीसिया के सिनोडल यात्रा का परिणाम है। यह एक साथ चलने का प्रयास है, एक परिवार की तरह महसूस करना एवं जीवन की आंधी का सामना करने के लिए एक ही नाव पर सवार होना है। यूक्रेन में चौथी बार यात्रा कर रहे पोप के उदार दान विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्राइस की पीड़ित लोगों को संत पापा का सामीप्य प्रदान कर रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने एजीएम के निकट सामूहिक कब्र के सामने प्रार्थना की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।